मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब जान ही रहे हैं कि फिलहाल हम लोग स्पीड के ऊपर बात कर रहे हैं, फास्टनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हम सबकी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। और यह अनिवार्य हिस्सा क्यों बना सच पूछिए तो हम भी नहीं जानते, बस बन गया है। हाँ, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं वो जरूर इस अंतर को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो समय रहा है 70 से लेकर के 90 तक का जो पीरियड, वह इतनी तेजी से भागने वाला पीरियड नहीं रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग इस दौड़ में शामिल हैं, जो भाग रहे हैं, उनसे जब मैं व्यक्तिगत स्तर पर पूछता हूं तो वो सब अपनी परेशानी की चर्चा करते हैं, भयानक रूप से परेशानी की चर्चा करते हैं कि जिंदगी क्या बन गई है सर, हम सब बहुत परेशान हैं। लेकिन वे इससे अलग होने का साहस नहीं जुटा पाते, और शायद वो अपनी जगह सही हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे इससे अलग हो गए, इस भाग दौड़ में शामिल नहीं रहे तो पीछे छूट जाएंगे, और अगर पीछे छूट जाएंगे तो उनके अंदर एक इतनी ज्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी कि फिर वो शायद जीने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। तो अब आप इसे किसी भी रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं कि या तो हमने इस फास्टनेस को ही इसी बात की इजाजत दे दी है कि वो आए और हमें अपना शिकार बना ले, या यूं कह लीजिए कि हम खुद उसके सामने चले गए हैं कि ले भैया हमारा शिकार कर ले, स्थिति चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात दिखाई देने लगी है। तो मित्रों, कल मैंने आप सबको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहा था, एक गजल आप लोगों को बताई थी और मैंने कहा था कि इसे सुनिए और बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो गजल है, मैंने इसे क्यों चुना, देख रहे हैं कि इस गजल की एक गति है जो बड़ी धीमी गति से ये गजल चलती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आप देख रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आप जल्दी से बोल करके देखिए, इसकी जान ही चली जाएगी, क्योंकि इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो स्लो पेस की हैं। हमारे जीवन में भी यही होगा, यदि आप किसी को बहुत तेजी के साथ देख लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आएगा, अगर आएगा भी आया और गायब हो गया, आया और गायब हो गया। लेकिन जब आप किसी को इत्मीनान से देखेंगे तो इत्मीनान से दिमाग में ख्याल भी आएंगे, और जब दिमाग में ख्याल इत्मीनान से आएंगे तो बट नेचुरल है इत्मीनान से आप उसके बारे में सोचेंगे और उसका प्रभाव भी बड़े इत्मीनान से आपके दिमाग पर पड़ेगा, और जितना इत्मीनान से उसका प्रभाव पड़ेगा वह उतने ही गहरे उतरता चला जाएगा। इसके बाद की लाइनें देखिए जो आगे चल करके हैं कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे और इत्मीनान हो जाएगा, फिर कहते क्या खोया क्या पाया, तब पता लगेगा कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। मित्रों इसके शब्द देखिए कि कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, इसमें कोई अलंकार नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, कोई कसीदेकारी नहीं है, सिंपल से शब्द हैं, बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसे उन शब्दों को गुथा इस तरीके से गया है कि इसका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त किस्म का हो गया है, मतलब इतना जबरदस्त प्रभावी वाक्य बन गए हैं कि इनसे प्रभावित न रह पाना ही मुश्किल है, आप प्रभावित होंगे ही होंगे। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आप में से कुछ लोगों ने जो मुझे सूचित किया है उसने मेरे उत्साह को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्साह को इस मायने में बढ़ाया है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं जो बात सोच रहा था वो सही ही है, और जो बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वह भी सही ही होगी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने लिखा कि सर इस गजल को हमने इससे पहले भी कई बार सुना था, लेकिन जब कल सुना तो ऐसा लगा कि हम इसे पहली बार सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा वाक्य कोई हो ही नहीं सकता कि मैं पहली बार सुन रहा हूं। क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार सुन रहा हूं, क्या किया है आपने, सोच करके देखिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत गजब की समीक्षात्मक पंक्ति है कि पहली बार लगा कि मैं सुन रहा हूं, हालांकि इससे पहले भी कई कई बार मैंने इसे सुना है। क्या किया है आपने, गाने वाले वही हैं, गजलकार वही हैं, म्यूजिक वही है, सब कुछ वही है, आपने केवल अपने को थोड़ा सा समेटा है, और समेटा भी इस मायने में है कि अपने अंदर थोड़ा सा इत्मीनान लेकर के आप आ गए हैं, चलते चलते नहीं सुन रहे हैं, दूसरा काम करते हुए नहीं सुन रहे हैं, सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, कहीं बज रहा है और कानों में नहीं पड़ रहा है। एक तो यह है कि आपने उद्देश्य चुना कि मुझे इसे सुनना है पहली बात, ये आपका पर्पस हो गया। यानी कि जब किसी भी चीज को हम पर्पसफुली करते हैं तो सीधी सी बात है कि उसके प्रति हमारा अटेंशन बढ़ जाता है, वह चीज हमारे लिए कीमती हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है, हम उस पर ध्यान देते हैं। इसके बाद फिर उसको जैसे सुनना चाहिए था वैसे सुना, बस और कुछ भी नहीं किया है। इसको कैसे सुनना चाहिए था, गजल है, प्रेम के भाव से लबालब गजल है, इत्मीनान से सुनना चाहिए, भाग दौड़ करते हुए नहीं सुनना है, अंदर से खिजलाते हुए नहीं सुनना है, ये सोचते हुए नहीं सुनना है कि यार अभी 3-4 मिनट इसमें बेकार के बर्बाद हो जाएंगे, इन तीन चार मिनट में तो हम ये भी कर लेते। आप गाड़ी चलाते हुए नहीं सुन रहे हैं, आप गजल सुनते हुए सुन रहे हैं और ये आपकी प्रायोरिटी है। तो आपकी जो सारी जो इंद्रियां हैं वो एक बिंदु पर केंद्रित हो गई हैं और अब जो गजल की गति है उस गति के साथ आपके चेतना की गति तालमेल बैठा कर चल रही है। यही तो है रिदम। नृत्य करने वाली नृत्य कर रही है, नृत्य करने वाला नृत्य कर रहा है, तबला बजाने वाला तबला बजा रहा है, दूसरे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गाने वाला गा रहा है या गाने वाली गा रही है। और अब आप देखें कि ये जो चारों जो अलग अलग ग्रुप हैं इनके बीच में जब तक एक तालमेल नहीं बैठेगा तब तक आपको रिदम का एहसास ही नहीं होगा, लयात्मकता नहीं आएगी उनमें। और इनमें जितनी ज्यादा लयात्मकता आ जाती है उतनी ही तालियां वो बटोर लेती है, सीधी सी बात है। तो हमारी चेतना की भी देखिए एक गति होती है और जब हमारे चेतना की गति बाहर की गति से अपना तालमेल बैठा लेती है उसका प्रभाव अद्भुत हो जाता है। फिर हम जिंदगी में कोई भी काम क्यों न करें, चाहे कोई भी काम करें, आफ्टर ऑल उसके लिए चेतना की जरूरत होती है। मित्रों मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। अभी मुंबई बिल्कुल एक दिन के लिए वहां की जिंदगी रुक गई है ना, पानी पानी हो गई मुंबई, भर गया, पानी से भर गया। आप बताइए कि क्यों भरा। आप सामान्य रूप में कहेंगे कि बरसात हुई। थोड़ा सा और आप तथ्यात्मक या सटीक तरीके से जवाब देना चाहेंगे तो आप कहेंगे तेज बरसात हुई, और अगर कोई बहुत वैज्ञानिक तरीके से वाक्य बनाएगा तो कहेगा कम समय में अधिक बरसात हुई। तो वाक्य है कम समय में अधिक वर्षा हुई, यानी कि इसे ही दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वर्षा तेज गति से हुई। सपोज कि जो वर्षा एक घंटे में हुई है वही वर्षा अगर 24 घंटे में हुई होती तो क्या बंबई की स्थिति यही रही होती, सोच करके देखिए, नहीं रही होती ना। तो वहां जो संकट है वो किस बात का है, गति का संकट है। समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र के ऊपर तो हवा पहले से भी बह रही थी, अब क्या हो गया, तो बस वो जो बहने वाली हवा थी उसने अपनी स्पीड तेज कर दी। आंधी भी तो यही करती है, हवा तो चल ही रही है, पूरे की पूरी धरती पर हवा चल रही है, लेकिन जब वो अपनी गति बढ़ा देती है तो वो आंधी में कन्वर्ट हो जाती है। आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपकी नाड़ी को पकड़ता है और नाड़ी की गति के आधार पर वो निर्धारित करता है कि आपको क्या बीमारी है। यानी कि नाड़ी की एक गति है और यदि वह अपनी गति से कम या अधिक चल रही है तो इसका मतलब है कि मामला कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को आपके दिल पर लगा करके क्या देखता है, हृदय की धड़कन को ही जानने और समझने की कोशिश करता है कि वो धड़कन सही है या नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ मित्रों कि इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं उन सब की एक निर्धारित गति है और जब भी वह निर्धारित गति भंग होती, चाहे वो कम हो या अधिक हो, तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सीधी सी बात है यही हमारी चेतना के साथ भी है। हमारी चेतना जो बाहर की चीजों को रिसीव करती है, रिसीव करने की भी उसकी एक गति है, और जब हम तेज गति के साथ अपनी चेतना पर कुछ आघात करते हैं तो उस आघात का कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ना ही पड़ना है, और मुझे लगता है कि अभी हम सबके साथ यही हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल अब चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है तो मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, कल और परसों आप सबसे भेंट नहीं हो सकेगी, सोमवार को फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।